ओम शांति। गुड मॉर्निंग और सभी को नमस्ते। कई दिनों से बाबा मुरली में याद और योग पर जोर दे रहे थे। आज बाबा, जैसे बाबा खुद कल्याणकारी हैं, बाबा चाहते हैं बच्चे भी ऐसे ही कल्याणकारी बने, तो सबका कल्याण कैसे करेंगे। बाबा का संदेश विश्व की सभी आत्माओं को मिले। एवरीवन ओके विद द ट्रांसलेशन? तो उसके लिए बाबा कहते हैं, बाबा का जो मुख्य चित्र है कितने, आज बाबा ने बताया है 6 चित्र। कई बार बाबा एक ही चित्र पर जोर देते हैं, तो आज बाबा ने बताया है सारे चित्र ऐसे बनाओ जो दूर से ही देख करके न सिर्फ आंखें खुले लेकिन बुद्धि भी खुल जाए। चित्रों से ऐसा ज्ञान मिले जो चित्रों के लिए आपसे पैसा भी न लेवे, क्योंकि इन्हीं चित्रों से ही हर एक का कल्याण होना है, जीवन का उद्धार होना है। धन्य हो गए बाबा के बन करके, बाबा ने हमको पसंद कर लिया। हमने बाबा को चुन लिया या बाबा ने हमको चुन लिया? कईयों को घर बैठे बैठे ही भगवान का संदेश मिल गया ना, तो ऐसे चित्र देख करके ही आज की मुरली 21 मार्च की साकार मुरली। मीठे बच्चे, श्रीमत पर कल्याणकारी बनना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। प्रश्न, किसी भी प्रकार की गफलत होने का मुख्य कारण क्या होगा? गफलत क्यों होती रहती है? बाबा तो आए हैं हमें इन सब से मुक्त करने, ऐसा बन जाए जो हमारे से कोई भी उल्टा कर्म न हो, तो किस बात का ध्यान रखना है? किसी भी प्रकार की गफलत होने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर, दे अभिमान। सारी समस्याओं की जड़ ही है दे अभिमान। दे अभिमान के कारण ही बच्चों से बहुत भूले होती है, वह सर्विस भी नहीं कर सकते हैं। उनसे ऐसा कर्म होता है, कई ऐसे कर्म करते हैं सबसे प्यार खींचते हैं, और कई ऐसा कर्म करते हैं जो सब उनको नफरत करते हैं। उनसे ऐसा कर्म होता है जो सब नफरत करते हैं। तो बाबा कहते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनो, आत्म अभिमानी बनो। कोई भी अकर्तव्य नहीं करो। धारणा युक्त कैसे बनना? आपस में सबके साथ व्यवहार भी कैसा होना चाहिए? बाबा कहते हैं, खेल खंड हो, सर्विस के अच्छे अच्छे प्लान्स बनाओ। खेल खंड के ऑपोजिट में बाबा हमेशा क्या कहते हैं? लून पानी नहीं बनना है। सबको मीठा पानी पसंद आता है, लून से तो नमक से और ही डैमेज होता है शरीर में। तो खेत खंड हो, सर्विस के अच्छे अच्छे प्लान्स बनाओ, मूल्य सुनकर धारण करो, इसमें बेपरवाह नहीं बनो। हमने तो कई बारी मुरली सुन ली है, अभी ऐसे ही बैठे बैठे सुन ले, अटेंशन से नहीं सुने कोई हर्जा नहीं है, बाबा तो वही बात सुनाते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं इसमें लापरवाह बेपरवाह नहीं बनो। गीत, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, धरती पर तू आचार्य। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप की श्रीमत। अभी हम सब सेंटर्स के बच्चों से बात कर रहे हैं, बाबा सभी ब्राह्मण बच्चों से बात कर रहे हैं। अब जो त्रिमूर्ति गोला जाड़ सीढ़ी लक्ष्मी नारायण का चित्र और लास्ट में श्री कृष्ण का चित्र, ये छह चित्र है मुख्य। ये जैसे पूरी प्रदर्शनी है, इनमें सब सार आ जाता है। सारे छह चित्रों में बाबा का सारा ज्ञान आदि मध्य अंत उसमें आ जाता है। जैसे नाटक के पर्दे बनाए जाते हैं एडवर्टाइज के लिए, वो कभी बरसात आदि में भी खराब नहीं होते हैं, अच्छी क्वालिटी के बनाए जाते हैं जो कभी खराब न हो। तो बाबा कहते हैं चित्र भी ऐसी क्वालिटी के ही बनाओ, ऐसे ये मुख्य चित्र बनाने चाहिए। बच्चों को श्रीमत मिलती है किसलिए? बच्चों को श्रीमत मिलती है रूहानी सर्विस बढ़ाने लिए, भारतवासी मनुष्य का कल्याण करने के लिए। गाते भी है, कल्याणकारी बेहद का बाप है तो जरूर, कल्याणकारी बेहद का बाप है तो उसके ऑपोजिट में फिर, तभी तो हम यहाँ कलयुग के अंत में पहुंचे हैं। तो जरूर कोई अकल्याणकारी भी होगा जिस कारण बाप को आकर फिर कल्याण करना पड़ता है। सभी का कितना अकल्याण हो गया है इसलिए बाप को आकर के फिर से कल्याण करना पड़ता है, ये तो बाबा का मुख्य टाइटल है, विश्व कल्याणकारी। रूहानी बच्चे जिनका कल्याण हो रहा है वह इन बातों को समझ सकते हैं। जैसे हमारा कल्याण हुआ है तो हम फिर औरों का भी कल्याण करें। यह हमने देखा दादी जानकी जी का मुख्य मंत्र था, जो हमने पाया है वो हमसे और भी पाए, ऐसे नहीं हमने पा लिया हम उसको प्राप्त करके ऐसे ही बैठ जाए, लेकिन जो हमने लिया वो फिर औरों को देना है। तो हमारा कल्याण हुआ है तो हम फिर औरों का भी कल्याण करें। जैसे बाप को भी चिंतन चलता है कि कैसे कल्याण करें, युक्तियां बता रहे हैं। 6x9 साइज के शीट पर ये चित्र बनाने चाहिए, 6 फुट 9 फुट का चित्र। दिल्ली जैसे शहरों में अक्सर करके बहुत मनुष्य जाते हैं, बड़े शहरों में सभी जाते हैं, अच्छी अच्छी चीजें देखने की होती है, इसलिए तो बाबा ने 2-3 शहर याद किए हैं जहां गवर्नमेंट की असेंबली आदि होती है, सेक्रेटेरिएट तरफ भी बहुत लोग आते हैं, वहां ये चित्र रखने चाहिए। बहुतों का कल्याण करने अर्थ बाप मत देते हैं, ऐसे टीम पर बहुत चित्र बन सकते हैं, एल्यूमिनियम शीट्स पर। देही अभिमानीपन बाप के सर्विस में लगना है। तो बाप राय देते हैं चित्र कितनी भाषाओं में बनना चाहिए। बाबा की मुरली तो कई भाषाओं में चलती है। चित्र के लिए बाबा कहते हैं चित्र हिंदी और अंग्रेजी में बनाने चाहिए। ये 6 चित्र मुख्य जगह पर लग जाए। अगर ऐसे मुख्य स्थानों पर लग जाए तो तुम्हारे पास सैकड़ों समझने के लिए आएंगे। ऐसा चित्र कहां और पर भी मिलेगा नहीं जिसमें ऐसी आंख खुल जाए, बुद्धि खुल जाए ज्ञान समझने से। परंतु बच्चों में दे अभिमान होने के कारण बहुत भूले होती है। ऐसे कोई मत समझे कि मैं पक्का देही अभिमानी हूं। थोड़ा पुरुषार्थ कर लिया समझते हैं मैं तो इतना पक्का देही अभिमानी हूं, मेरे से कोई भूल नहीं होती है। गलतियां तो बहुत होती है, सच नहीं बतलाते हैं। तो समझाया जाता है ऐसा कोई कर्तव्य नहीं करो जो कोई खराब नफरत लाए कि इनमें दे अभिमान है। नफरत के लिए भी बाबा कहते हैं अच्छी नफरत और बुरी नफरत, खराब नफरत है। नफरत तो नफरत ही है लेकिन बाबा कहते हैं इसमें भी कैटेगरीज आ जाती है। तुम सदैव क्या समझो, कल परसों ही वहां पर ज्ञान सरोवर में इसका डिबेट चला था गीता के ऊपर। गीता कहां पर सुनाई गई थी, युद्ध के मैदान में। तो तुम सदैव युद्ध के मैदान में हो और जगह तो 10-20 वर्ष तक युद्ध चलती है। और यहां हमारी युद्ध कितना समय चलती है, बाबा कहते पूरा जीवन ही तुम्हारी युद्ध चलती है। हूं और जगह तो 10-20 वर्ष तक युद्ध चलती है। तुम्हारी माया से अंत तक युद्ध चलनी है परंतु है गुप्त, जिसको कोई जान नहीं सकते हैं। किसी के मन में क्या तूफान चल रहा है, क्या युद्ध चल रही है, कोई कुछ देख नहीं सकते हैं। लेकिन खुद को मालूम पड़ता है हमारी कितनी युद्ध चलती है। गीता में जो महाभारत लड़ाई है वह तो जिस्मानी दिखाई है परंतु है ये रूहानी। रूहानी युद्ध है किसकी, रूहानी युद्ध है पांडवों की। ऐसे नहीं है कि भगवान से प्रीत है तो वो कोई युद्ध से बच गए। प्रीत बुद्धि वाले भी, उनकी भी युद्ध चलती है परंतु है रूहानी। रूहानी युद्ध है पांडवों की। वह जिस्मानी युद्ध है जो परमपिता परमात्मा से विपरीत बुद्धि है। तुम ब्राह्मण कुलभूषणों की है प्रीत बुद्धि। तुमने और संतोड़ एक बाप संग जोड़ी है। बहुत बार देह अभिमान आने कारण क्या होता है, देह अभिमान के कारण बहुत बार देह अभिमान आने कारण भूल जाते हैं, फिर अपना ही पद भ्रष्ट कर लेते हैं, फिर अंत में बहुत पछताना पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकेंगे। यह कभी बदल सकता है, बाबा कहते हैं ये कल्प कल्प की बाजी है। इस कल्प में जो हुआ अगले कल्प भी वही होता रहेगा। इस समय कोई अकर्तव्य कार्य करते हैं तो कल्प कल्पांतर के लिए पद भ्रष्ट हो जाता है, बड़ा घाटा पड़ जाता है। तो बाप कहते हैं कितना घाटा पड़ जाता है। आगे तुम 100% घाटे में थे। कुछ भी फायदा नहीं होता था क्योंकि देह अभिमान से ही सब कुछ होता रहता था। अब बाप 100% फायदे में ले जाते हैं। तो श्रीमत पर चलना है। हर एक बच्चे को बाप समान कैसे बनना है? आज की मुरली अनुसार हर एक बच्चे को कल्याणकारी बनना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। सुख है ही स्वर्ग में, और नरक में तो दुख है। क्यों? स्वर्ग और नरक, यह है विशेष दुनिया व वाइसलेस थी। स्वर्ग वाइसलेस दुनिया है, वहां कोई उल्टे कर्म नहीं होते हैं, इसलिए सब सुखी है। अब विशेष दुनिया बनी है, फिर बाप वाइसलेस बनाते हैं। इन बातों को दुनिया में कोई नहीं जानते हैं। तो मुख्य ये चित्र परमानेंट स्थानों पर लगाने चाहिए। पहला नंबर वो तो बाबा ने बता दिया, सब वहां पर जाते हैं। दिल्ली में मुख्य सिटी है, कैपिटल है, इसलिए सब जाते हैं। दूसरा, फिर सेकंड बॉम्बे और कलकत्ता। कोई को ऑर्डर देने से शीट पर बना सकते हैं, ऐसे चित्र बना करके बड़े बड़े शहरों में लगा दो। आगरा में भी घूमने के लिए बहुत जाते हैं। बच्चे सर्विस तो बहुत अच्छी कर रहे हैं, और भी कुछ कर्तव्य करके दिखाए। थोड़ा ही कर दिया, उसमें खुश हो गए, बाबा कहते और तो बहुत कुछ बाकी है, तो और भी करके दिखाए। यह चित्र बनाने में कोई तकलीफ नहीं है, सिर्फ क्या चाहिए? बाबा कहते ये सबसे बड़ी अथॉरिटी है। कौन सी अथॉरिटी सबसे बड़ी अथॉरिटी? अनुभव की अथॉरिटी। तो बाबा कहते सिर्फ एक्सपीरियंस चाहिए, अच्छे बड़े चित्र हो जो कोई दूर से भी पढ़ सके। गोला भी बड़ा बन सकता है, सेफ्टी से रखना पड़े जो कोई खराब न करे। यज्ञ में असुरों के विघ्न पड़ते हैं, क्योंकि विघ्न क्यों डालते हैं? ये सब है नई बातें। कोई कुछ भी नया करता है तो जरूर बाकी सब विघ्न डालेंगे। उस दिन मालूम पड़ा जीसस क्राइस्ट को भी क्रॉस पर क्यों चढ़ाया? क्योंकि वो भी नया ज्ञान सुनाने लिए सब जगह प्रचार कर रहे थे। तो कुछ भी नया होता है, सहन भी बहुत कुछ करना पड़ता है, विघ्न भी बहुत आते हैं। तो ये भी बाबा हमें नई नई बातें सुनाते हैं। ये समझते हैं, ये तो दुकान निकाल बैठे हैं। आखिरी में सब समझ जाएंगे कि हम उतरते आए हैं, जरूर कुछ खामी है। बाप है ही कल्याणकारी, वही बता सकते हैं कि भारत का कल्याण कैसे और कब हुआ। भारत को तमो प्रधान कौन बनाते हैं, फिर सतो प्रधान कौन बनाते हैं? यह चक्र कैसे फिरता है यह कोई नहीं जानते हैं। इतने ऊंच देवी देवता थे, वो कैसे फिर नीचे आ गए किसी को मालूम नहीं है, क्योंकि संगम युग को भी नहीं जानते हैं। समझते हैं भगवान युगे युगे आता है। कभी कहते हैं भगवान तो नाम रूप से न्यारा है। भारत प्राचीन स्वर्ग था, यह भी कहते हैं स्वर्ग से पहले क्या था। यह भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले देवताओं का राज्य था, फिर कल्प की आयु लंबी दे दी है, घोटाला सारा कैसे कर दिया। तो बच्चों को देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत करनी है। आधा कौर सत्युग और त्रेता में तुम कैसे थे? सत्युग त्रेता में कैसे रहते थे? ज्ञान तो कुछ था नहीं, कोई ज्ञान था? ज्ञान का स्वरूप ही बन गए थे। तो बाबा कहते हैं सत्युग त्रेता में तुम आत्म अभिमानी थे परंतु परमात्म अभिमानी नहीं थे। भगवान की जरूरत ही नहीं थी, भगवान का कोई ज्ञान ही नहीं था, उसका परिचय ही नहीं था। यहां तो फिर तुम देह अभिमानी बन पड़े हो, फिर देही अभिमानी बनना पड़े। यात्रा अक्षर भी है परंतु अर्थ नहीं समझते हैं, इसलिए स्थूल में बता दिया कि हमें चारों धाम की यात्रा करनी है। मन मनाभव का अर्थ है, मन मनाभव माना, आज बाबा कहते हैं मन मनाभव माना रूहानी यात्रा पर रहो। हे आत्माएं मुझ पाप को याद करो। श्री कृष्ण तो ऐसे कहने सके, श्री कृष्ण खुद देहधारी, वो तो कहने सके मुझ आत्मा को याद करो। उन पर कोई कलंक लगा न सके, तो यह अभी बाप ने समझाया है। सीढ़ी जब उतरे है तो आधा कप काम चिता पर बैठ काले हो जाते हैं। अब है ही कलयुग अंत, आयरन एज, तो उनकी संप्रदाय भी काली ही होंगी, जैसा युग वैसे वहां के मनुष्य। परंतु सबका सावरा रूप कैसे बनाए? चित्र आदि जो भी बनाए हैं सब बेसमझी के, उसको ही श्याम फिर सुंदर कहना ये कैसे हो सकता है? भक्ति मारक की कहानियां सुने, भक्ति मारक के चित्र देखे, तो जब बाबा समझ देते हैं तो उन पर हंसी आती है कि हम क्या क्या करते थे, एक ही को श्याम सुंदर कैसे एक समय पर कह सकते हैं? तो बाबा हमको समझा नहीं देते हैं, एक ही व्यक्ति अलग अलग समय पर, एक समय सुंदर था फिर वो श्याम बन गया, उसको ही श्याम फिर सुंदर कहना ये कैसे हो सकता है? उनको कहा ही जाता है अंधश्रद्धा। अंधश्रद्धा से गुड़ियों की पूजा करने वाले, गुड़ियों का नाम रूप ऑक्यूपेशन आदि हो नहीं सकता। जो बेजान है उनका कोई नाम रूप, बाबा कहते हैं ऑक्यूपेशन नहीं होता है। तुम भी पहले गुड़ियों की पूजा ही करते थे ना, भक्ति मार्ग है ही गुड़ियों की पूजा, अर्थ कुछ भी नहीं समझते थे। तो बाबा ने समझाया है प्रदर्शनी के चित्र मुख्य बन जाए, कमेटी बने जो प्रदर्शनी, ऐसी कमेटी बने जो प्रदर्शनी पिछाड़ी प्रदर्शनी करती रहे, सेवा का तरीका सब जगह प्रदर्शनी लगाते रहो। बंधन मुक्त तो बहुत है, सेवा के लिए कोई बहाना नहीं दे सकते। तो बाबा कहते बंधन मुक्त जो है वो जाकर के ऐसे प्रदर्शनी की सेवा करते रहे। बंधन मुक्त बहुत है, कन्याएं बंधन मुक्त है, और कौन बंधन मुक्त? वानप्रस्थी भी बंधन मुक्त है। तो बच्चों को डायरेक्शन अमल में लाना चाहिए। शुरू शुरू में सभी ने ऐसे ही किया ना, बाबा ने बोला तो तुरंत ही जाकर के ऐसे करने लगे। आज बाबा ने बोला ऐसे चित्र बनाओ, 6x9 फुट के चित्र बनाओ, तो सभी बनाने लगे थे। डायरेक्शन अमल में लाना चाहिए। यह है गुप्त पांडव, कोई को भी पहचान में नहीं आ सकते हैं। बाप भी गुप्त है, ज्ञान भी गुप्त। वहां मनुष्य मनुष्य को ज्ञान देते हैं, मनुष्य मनुष्य को ज्ञान देते हैं, वो भी सारा शास्त्रों का ही जो लिखा हुआ है, सारा मिलावट का। यहां परमात्मा बाप ज्ञान देते हैं आत्माओं को, परंतु ये नहीं समझते कि आत्मा ज्ञान लेती है क्योंकि वह तो आत्मा को निर्लेप कह देते हैं। आत्मा निर्लेप है, आत्मा पर कुछ भी लगता नहीं है, इसलिए आत्मा को ज्ञान भी समझ नहीं आता है। लेकिन बाबा परमात्मा सिर्फ आत्माओं को समझाते हैं। वास्तव में आत्मा ही सब कुछ करती है, पुनः जन्म आत्मा लेती है, सो भी कर्मों के अनुसार। बाप ये सब पॉइंट्स अच्छी रीति बुद्धि में डालते हैं। सब सेंटर्स में नंबर वार देही अभिमानी है, जो अच्छी रीति समझते और फिर समझाते हैं, दे अभिमानी न कुछ समझते हैं न समझा सकते हैं। देह अभिमान के कारण ज्ञान धारण नहीं कर सकते हैं, तो न किसी को समझा सकते हैं। ये कहना मैं कुछ समझती नहीं हूं, यह भी देह अभिमान है। अरे तुम तो आत्मा हो। बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं, तो दिमाग ही खुल जाना चाहिए। तकदीर में नहीं है तो खुलता ही नहीं है। इतना स्पष्ट ज्ञान बाबा जो देते हैं, वो अभी फिर बुद्धि में बैठता नहीं है। तो बाप तकदीर कराते हैं, परंतु तकदीर में नहीं है तो पुरुषार्थ भी नहीं करते हैं। है बहुत सहज, सिर्फ क्या समझना है। ज्ञान में बाबा कहते दो ही बातें समझनी है, अलफ और बे। है बहुत सहज, अलफ और बे समझना है। बेहद के बाप से वर्षा मिलता है। तुम भारतवासी सब कौन थे? भारतवासी सतयुग आदि में कौन थे? देवी देवताएं। तुम भारतवासी सब गॉड गॉडेस थे। भगवान ने क्या बनाया? अपने समान ही गॉड गॉडेस बनाया। प्रजा भी ऐसी थी। इस समय सब पतित बन पड़े हैं। कितना समझाया जाता है। बाबा क्या समझाते हैं? 90 साल हो गए बाबा समझाते समझाते थक गए। एक ही बात समझा रहे हैं, वो भी मुश्किल लगता है। कितना समझाया जाता है, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। बाप कहते हैं, बच्चे हमने तुमको गॉड गॉडेस बनाया था। भगवान ने तो बनाया था, हमने क्या किया? गॉड गॉडेस से साधारण मनुष्य हो गए। तुम अब क्या बन गए हो? यह है कुंभी पाक नरक। विश्व वैतरणी नदी में मनुष्य जानवर पंछी आदि सब एक समान दिखाते हैं। यह तो मनुष्य और ही खराब हो पड़े हैं। मनुष्य में क्रोध भी कितना है, लाखों को मार देते हैं। क्रोध के कारण बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो जाती है, जो समझ नहीं सकते हैं हम क्या करते हैं। एक सेकंड में ही कुछ डायरेक्शन दे देते हैं, कितनों का नुकसान हो जाता है, लाखों को मार देते हैं। भारत जो वैश्यालय बना है, फिर इनको शिवालय शिव बाबा ही बनाते हैं। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, समझाते भी हैं, फिर डायरेक्शन देते हैं, ऐसे ऐसे करो, चित्र बनाओ। फिर जो बड़े बड़े मनुष्य हैं, उनको समझाओ। यह प्राचीन योग, प्राचीन नॉलेज सबको सुननी चाहिए। प्राचीन भारत का ही योग है जो सबको सिखाना चाहिए। हॉल लेकर प्रदर्शनी लगानी है। उनको तो पैसे आदि कुछ नहीं लेने चाहिए। ऐसा ज्ञान हम तुमको देते हैं, इतना अमूल्य ज्ञान है, उनके लिए कुछ पैसा लेना नहीं चाहिए। फिर भी जो ठीक समझते हो समझो तो किराया ले लो। मुफ्त में कोई देने के लिए तैयार नहीं है तो भले थोड़ा ले लो, फिर जब समझ में आ जाएंगे तो बाबा कहते हैं चित्र तो आप ही देखो, चित्र देखेंगे तो फिर झट पैसे वापस कर देंगे। वो दिन देखने हैं अभी बाकी। सिर्फ युक्ति से समझाना चाहिए। अपना अपना हॉल्स तो सब देने के लिए तैयार है, क्योंकि अभी कहां पर भी कुछ भी हो नहीं रहा है, तो समझते हैं ब्रह्मा कुमारी जो ज्ञान देती है बहुत अच्छा देती है, तो भले हमारी जमीन आप यूज करो। सिर्फ युक्ति से समझाना चाहिए। अथॉरिटी तो हाथ में रहती है ना, चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं। वो थोड़ी समझते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि तो विनाश को प्राप्त हो गई है। पांडवों ने तो भविष्य में पद पाया, सो भी राज्य पीछे भविष्य में होगा। प्रीत बुद्धि वाले उनको राज्य मिलेगा, सो भी भविष्य में होगा, अभी थोड़े ही होगा। यह मकान आदि सब टूट जाएंगे। अब बाप ने समझाया है प्रदर्शनी भी करनी चाहिए, खूब अच्छी तरह से कार्ड पर निमंत्रण देना है। निमंत्रण किनको दो? पहले बड़ों को समझाओ तो फिर वो मदद भी करेंगे। बाकी सोए नहीं रहना है। कई बच्चे देह अभिमान में सोए रहते हैं। अपनी आंख खुली तो औरों को भी खोलनी है, इसके लिए सेवा इतनी करनी है जो सबको संदेश मिल जाए। इसलिए बाबा कहते सोए नहीं रहना है। कमेटी बनाए, खेल खंड हो, प्लान बनाना चाहिए। बाकी मुरली नहीं पड़ेंगे तो धारणा कैसे होंगी? मुरली जरूर सुननी है। ऐसे बहुत लागर्ज बेपरवाह है, बेपरवाह होते रहते हैं कि हमने तो सुनी हुई है, इसलिए मुरली भी ध्यान से नहीं सुनते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकले दे बच्चों प्रति, माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य साथ देही अभिमानी बन सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां निकालनी है। आपस में खेल खंड हो, सर्विस करनी है। जैसे बाप कल्याणकारी है ऐसे कल्याणकारी बनना है। दूसरा, प्रीत बुद्धि बन और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। क्या नहीं करना है? बाबा ने हमको कर्म की पूरी फिलॉसफी बताई है, तो इसलिए कर्म ध्यान से करना है। कोई ऐसा अकर्तव्य नहीं करना है जो कल्प कल्पांतर के लिए नुकसान हो जाए। प्रीत बुद्धिपन और संतोड़ एक संग जोड़ना है। कोई ऐसा अकर्तव्य नहीं करना है जो कल्प कल्पांतर के लिए नुकसान हो जाए। आज का वरदान, बेहद की वैराग वृत्ति द्वारा नष्ट मोह स्मृति स्वरूप बनने वाले अचल अडोल भव। जो सदा बेहद की वैराग वृत्ति में रहते हैं वह कभी किसी भी दृश्य को देख घबराते व हिलते नहीं, सदा अचल अडोल रहते हैं, क्योंकि बेहद की वैराग वृत्ति से नष्ट मोह स्मृति स्वरूप बन जाते हैं। बेहद की वैराग वृत्ति से नष्ट मोह स्मृति स्वरूप बन जाते हैं। अगर थोड़ा बहुत कुछ देखकर अंश मात्र भी हलचल होती है, इसलिए तो बाबा कहते हैं अंत में पेपर होगा सिर्फ सेकंड का, उसी सेकंड थोड़े भी हलचल में आ गए तो फेल हो जाएंगे। अगर थोड़ा बहुत कुछ देखकर अंश मात्र भी हलचल होती है या मोह उत्पन्न होता है तो अंगद के समान अचल अडोल नहीं कहेंगे। बेहद की वैराग वृत्ति में गंभीरता के साथ रमणीकता भी समाई हुई है। आज मुरली छोटी है, साथ में फिर मम्मा की वाणी भी है। स्लोगन, राज्य अधिकारी के साथ साथ बेहद के वैरागी बनकर रहना, यही राज ऋषि की निशानी है। राज्य अधिकारी भी हो साथ साथ बेहद के वैरागी भी। राज्य में कैसे रहना है, उसमें लिप्त नहीं हो जाना है लेकिन वैरागी बनकर रहना। राज्य अधिकारी के साथ साथ बेहद के वैरागी बनकर रहना, यही राज ऋषि की निशानी है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, आत्मा कभी परमात्मा का अंश नहीं हो सकती है। बहुत मनुष्य ऐसे समझते हैं हम आत्माएं परमात्मा की अंश है। अब अंश तो कहते हैं टुकड़े को, इसमें से काटा इसलिए ये टुकड़ा इसका अंश है, तो आत्मा भी परमात्मा से निकली हुई है इसलिए परमात्मा का अंश है। ये उनकी गलत फहमी है। अंश है, अब अंश तो कहते हैं टुकड़े को, एक तरफ कहते हैं परमात्मा अनादि है और अविनाशी है, तो ऐसे अविनाशी परमात्मा को टुकड़े में कैसे लाते हैं? अब परमात्मा कट कैसे हो सकता है? वैसे आत्मा के लिए भी कहते हैं, परमात्मा के लिए भी कहते हैं, आत्मा ऐसी है काटे काटी नहीं सकती, जलाए जल नहीं सकती, डुबोए भीग नहीं सकती है, लेकिन वो कहते हैं आत्मा परमात्मा का अंश है, उसमें से निकला है, तो परमात्मा कट कैसे हो सकता है? आत्मा ही अजर अमर है तो अवश्य आत्मा को पैदा करने वाला भी अमर ठहरा। जैसे परमात्मा वैसी आत्मा तो अमर ही कहेंगे। ऐसे अमर परमात्मा को टुकड़े में ले आना गोया परमात्मा को भी विनाशी कह दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए तो उसका तो अंत ही हो गया, विनाशी कह दिया। लेकिन हम तो जानते हैं कि हम आत्मा परमात्मा से निकले हुए टुकड़े नहीं है, लेकिन हम आत्मा परमात्मा की संतान है, तो हम उसके वंशज ठहरे अर्थात बच्चे ठहरे, वो फिर अंश कैसे हो सकते हैं? इसलिए परमात्मा के महावाक्य है कि बच्चे मैं खुद तो इमोर्टल हूं, और क्या है भगवान अपना परिचय दे रहे हैं वो कौन है, मैं खुद तो इमोर्टल हूं, जागती ज्योत हूं, मैं दीवा हूं, मैं कभी बुझता नहीं हूं। दीवा तो वैसे बुझ जाते हैं लेकिन परमात्मा कहते हैं मैं कभी बुझता नहीं हूं, और सभी मनुष्य आत्माओं का दीपक जगता भी है तो बुझता भी है, उन सब को जगाने वाला फिर मैं हूं, क्योंकि लाइट और माइंड देने वाला मैं हूं। आत्मा को जगाने के लिए लाइट चाहिए तो बाबा कहते मैं ही लाइट और माइंड देने वाला हूं। बाकी इतना जरूर है मुझ परमात्मा की लाइट और आत्मा की लाइट दोनों एक है, दोनों समान है, आत्मा की लाइट और परमात्मा की लाइट है। इतना जरूर है मुझ परमात्मा की लाइट और आत्मा की लाइट दोनों में फर्क अवश्य है। जैसे बल्ब होता है, कोई ज्यादा पावर वाला कोई कम पावर वाला होता है, वैसे आत्मा भी कोई ज्यादा पावर वाली और कोई कम पावर वाली। ज्यादा पावर बढ़ाने के लिए तो बाबा घड़ी घड़ी हमको कहते रहते हैं, अपने को आत्मा समझ, मुझ परमात्मा से योग लगाओ, तो आत्मा में वो रोशनी आती जाएंगी, आत्मा पवित्र बनती जाएंगी। बाकी परमात्मा की पावर कोई से कम ज्यादा नहीं होती है, उसकी हमेशा कांस्टेंट रहती है, सबसे ज्यादा। परमात्मा की पावर कोई से कम ज्यादा नहीं होती है, तो तभी तो परमात्मा के लिए कहते हैं परमात्मा सर्वशक्तिमान, अर्थात सर्व आत्माओं से उसमें शक्ति ज्यादा है। वही सृष्टि के अंत में आता है। अगर कोई समझे परमात्मा सृष्टि के बीच में आता है, अर्थात जो कह दिया है युगे युगे आता है, तो मानो परमात्मा बीच में आ गया। परमात्मा बीच में आ गया, वह सर्वशक्तिमान है, सर्व को शक्तिमान बनाते हैं, तो फिर आत्माओं की दुर्गति कैसे होती गई जबकि वो आ गया। तो कहते हैं युगे युगे आता है, तो मानो परमात्मा बीच में आ गया, तो फिर परमात्मा सर्व से श्रेष्ठ कैसे हुआ। अगर कोई कहे परमात्मा युगे युगे आता है, तो क्या ऐसा समझे कि परमात्मा घड़ी घड़ी अपनी शक्ति चलाता है। ऐसे सर्वशक्तिमान की शक्ति इतने तक है, अगर बीच में ही अपनी शक्ति से सबको शक्ति अथवा सद्गति दे देते हैं, तो फिर उनकी शक्ति कायम होनी चाहिए, फिर दुर्गति को क्यों प्राप्त करते हो। परमात्मा बीच में ही आ गए, सबके सद्गति कर दी, तो फिर स्वर्ग में चले जाना चाहिए, ये तो और ही दुर्गति होती जाती है। तो उससे साबित है कि परमात्मा युगे युगे नहीं आता है, अर्थात बीच बीच में नहीं आता है। वो आता है कल्प के अंत समय, और फिर आता है घड़ी घड़ी आते रहते हैं। वो आता है कल्प के अंत समय और एक ही बार अपनी शक्ति से सर्व की सद्गति करता है। जब परमात्मा ने इतनी बड़ी सर्विस की है, तब उनका यादगार क्या बनाया। परमात्मा ने इतनी सर्विस की, सभी आत्माओं का कल्याण किया, इसलिए यादगार बड़ा शिवलिंग बनाया है। और इतनी पूजा करते हैं तो अवश्य परमात्मा सत भी है, चैतन्य भी है और आनंद स्वरूप भी है। सच्चित आनंद परमात्मा के लिए कहते हैं, तो यही उनका स्वरूप है। अच्छा, ओम शांति। आज का अव्यक्त इशारा, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। निश्चय से निर्भय और निश्चिंत, व्यर्थ संकल्प व संशय की मार्जिन होते हुए भी समर्थ संकल्प चले कि सदा बाप रक्षक है, कल्याणकारी है। इस निश्चय की विजय अवश्य होती है। तो क्वेश्चन मार्क का टेढ़ा रास्ता न ले। क्या करो, क्वेश्चन मार्क टेढ़ा है, उसके बजाय बाबा कहते हैं सदा कल्याण की बिंदी लगाओ, अर्थात फुल स्टॉप। कुछ भी होता है उसको बढ़ा करके आगे नहीं बढ़ाओ, वहां पर ही फुल स्टॉप कर दो। इसी विधि से हर बात सहज भी होंगी और सिद्धि भी प्राप्त होंगी। कोई भी बात हो जाती है क्यों क्या के क्वेश्चन नहीं करो, लेकिन उसी समय फुल स्टॉप लगा दो। अच्छा, ओम शांति।
ओम शांति। आज हमारे बीच जस्सू बहन जी आए हैं। आप लंदन में रहते हैं और अगर मैं कहूँ पूरी ऑलराउंडर है। हमने इनको देखा, अभी अभी मुरली सुना रही है, अभी अभी किचन में सेवा कर रही है, अभी मुरली ट्रांसलेशन कर रही है, अभी किसी को कोर्स करा रही है। तो ऐसी हमारी जस्सू बहन है, हम सब इनका करतल ध्वनि से धन्यवाद करेंगे। इनकी विशेषता है कि कैसे बाबा की मुरलियां जो हिंदी में ही चलती है उनका इंग्लिश अनुवाद आप ही करते हैं। मुझे याद है जैसे विदेशियों की सीजन विदेशी आना शुरू हुए तो इंग्लिश में मुरलियों की आवश्यकता पड़ी। पहले तो नहीं होती थी जब विदेश में कोई सेंटर नहीं थे, लेकिन जब आवश्यकता पड़ी तो हमारे दादा आनंद किशोर वही मुरली ट्रांसलेट करते थे। हमारे दादा आनंद किशोर थे जो शुरुआत से ही बाबा के साथ ही रहे, तो वो करते थे। और फिर जब मधुबन में आने लगे भाई विदेश के भाई बहने, तो हमारे निर्भय भाई ट्रांसलेशन करते थे उसी वक्त जब अव्यक्त बाप दादा आते थे। फिर 76 से दादी जी ने मुझे मधुबन में रखा, तब से हम करने लगे हैं। परंतु जस्सू बहन की विशेषता है वो सब मुरलियां ट्रांसलेट करती है, चाहे साकार चाहे अव्यक्त, अभी अव्यक्त इशारे सब कुछ ट्रांसलेशन लंदन से वही करती है। और सारे विश्व के भाई बहनों को उनका लंदन में जो वो करते हैं वो विश्व में पहुंचता है। तो ये इनकी बहुत बड़ी विशेषता है। हाँ, तो जरूर हम दोनों का अच्छा आपस में कांटेक्ट था। जब बाबा की अव्यक्त मुरलियां चलती थी तो कई बार ये फोन करके मेरे से मिलती थी, बात करती थी कि इसका सही ट्रांसलेशन क्या होगा, क्या अर्थ होगा। मुझे भी कुछ पूछना होता था तो मैं इनसे ही पूछती रही। अभी तो सब रिवाइज होती है ना, तो दो शब्द आप सुनाएंगे, अभी है टाइम, थोड़ा दो शब्द सुनाओ।
एक्चुअली आज की मुरली में भी मैंने शीलू बहन को सुबह में फोन किया। कभी कभी इंग्लिश में भी गलती हो जाती है तो उसको करेक्ट करके फिर करेक्शन भेजते हैं। आज हम मुरली पहले से पढ़ी तो उसमें एक शब्द था जो समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने समझा शीलू बहन को मालूम होगा, तो मैंने उसको सुबह सुबह फोन किया तो सर सुलेमान बाथरूम में होगी।
कौन सा शब्द था? कौन सा शब्द था?
शब्द था हिंदी में लिखा हुआ है पोर्ट्रिएट, जो दिल्ली जैसे शहरों में जाते हैं गवर्नमेंट असेंबलीज में जाते हैं, फिर हमने इंग्लिश से उसको टैली किया तो इंग्लिश में लिखा था सेक्रेटेरिएट।
अच्छा,
तो फिर राजू भाई से फोन किया तो राजू भाई ने फिर बताया ऐसा तो कोई शब्द है ही नहीं, लेकिन ये शायद कभी कभी डिजिटली कन्वर्ट करते हैं ना तो उसमें गलती हो गई होगी, तो इसलिए फिर हमने देखा तो दूसरे भाई ने भी बताया कि ये एक्चुअली सेक्रेटेरिएट होना चाहिए, और देखा है कि उसको इटैलिक्स में किया गया है, सो इट्स एक्चुअली एन इंग्लिश वर्ड, बाबा ने इंग्लिश में ही बोला होगा लेकिन आधा ही उसमें आया है, तो इसलिए ऐसे कई बारी मुरलीज में गलती हो भी जाती है, ह्यूमन एरर तो हो ही जाता है। अभी बाबा कहते हैं कोई भी परफेक्ट बना नहीं है, तो कई बारी फिर अभी मधुबन में आए हैं तो देखते हैं यहाँ पर सब मिलते हैं तो तुरंत समझते हैं कि बहन सामने आई है तो उनको हम बता देते हैं। तो इस बारी मधुबन में हमको अभी 3 हफ्ता हो गए 4 हफ्ता हो गए, उसमें से हमको 3 या 4 जने ने करेक्शंस दिए, मुरली में ऐसे था ऐसे था। मैं बोला जब संपर्क में आते हैं तो इजी रहता है सबको बताना कि ये गलती हुई ये गलती हुई, तो 3-4 बारी मैसेजेस ऐसे गए कि ये थोड़ा सा करेक्शन कर लेना पर अच्छा है जो कोई करेक्शन देते हैं, क्योंकि हम हमेशा समझते हैं कि यह भगवान का महावाक्य है, उसमें कुछ भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। जो ट्रांसलेशन भी करते हैं उस दृष्टि से करते हैं कि उसमें सबको सही तरीके से समझ में आए, तो उसमें अपना कोई एडिशन करना नहीं चाहते हैं, लेकिन जो बाबा ने सुनाया है उसी रीति से उसका ट्रांसलेशन करके सबको सुनाए। तो मैं तो कहेंगी ये मेरा सौभाग्य था, 1990 से दादी ने हमको ये सेवा दी थी तो तब से ही हम करते आए हैं। तो उसमें अव्यर्थ मूल्यों का भी ट्रांसलेशन करना बहुत अच्छा रहा था, क्योंकि अपना ही रिविजन उसमें हो जाता है। सो आई रियली एंजॉयड वो सब करना, ये समझती हूँ अपना भाग्य रहा है।
और इसकी विशेषता केक बहुत अच्छा बनाती प्यार से केक बनाती सारा। अभी तो हम सब बाबा की याद में बैठेंगे। आज बाबा ने कहा 6 फीट बाय 9 फीट, तो कई पूछे 6 फीट बाय 9 फीट कैसा होगा। तो हमारे हिस्ट्री हॉल में जो चित्र है ना बाबा के, जो चित्र है त्रिमूर्ति गोला और झाड़, ये 6 फीट बाय 9 फीट है। ये बाबा ने खास बनवाया था हिस्ट्री हॉल के लिए। तो इतने बड़े बड़े चित्र बाबा चाहते हैं कि ऐसे मुंबई और दिल्ली में होने चाहिए। अभी तो बहुत बड़े बड़े चित्र तो है ही है। अभी हम सब बाबा की याद में बैठेंगे और उसके बाद डबल विदेशी भाई बहनों को